Jam Vishnupad Paramhans Parichkacharya Ashtatatsar Shishimad Srila Bhakti Siddhant Sarasthi Goswami Prabhupad Ki Anant Koti Vaishnavrinda Ki Namacharya Srila Haridas Chakur Ki Prem Se Kahiye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shishi Radha Krishna Gokupinath Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Ganga Mai Ki Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Srila Vamande Prakatya Divas Maha Mahotsav Ki Srila Chief Goswami Avirbhav Tithi Maha Mahotsav Ki Nitai Gaur Premanande All Glorious to Assembled Devotees All Glorious to Assembled Devotees All Glories to Assembled Devotees All Glories to Shishi Guru and Gauranga All Glories to Srila Prabhupada Om Ajnanat Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Valitam Yena Tasmai Shri Guruve Namha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gura Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Namaam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में और आज है श्री वामन देव जी का प्राकट्य दिवस और साथ ही साथ आज है श्री जीव गोस्वामी जी का भी प्राकट्य दिवस तो हम पहले संक्षिप्त में श्री वामन अवतार के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद श्री जीव गोस्वामी के जीवन से हम कुछ शिक्षाएं इसके विषय में चर्चा करेंगे उनका गुणगान करेंगे तो इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए मैं परंपरा के अनुसार उनका गुणगान कर सकूं तो भगवान वामन देव आठवें स्कंद में उनकी कथा आती है और अभी थोड़े महीने पहले ही एट कैंटो हुआ था तो उसमें से क्विक थ्री क्वेश्चंस वामन देव जी के पास टाइम से जब भगवान वामन देव का अवतार जब हुआ तो भगवान वामन देव कैसे दिखते थे उनका जो रूप था कैसा था कौन से कलर का था किसी को पता है हाँ गोल्डन कलर नहीं वो महाप्रभु का था भगवान येलो नहीं भगवान वामन देव का जो रंग था वो कैसा था या उनके कैसे दिखने में वो कैसे थे जब भगवान वामन जी का जो जब उनका प्राकट्य हुआ तो वो 400 नारायण फॉर्म में थे और उसके बाद वो उन्होंने वामन रूप में अपने आप को परिवर्तित किया तो ये आठवें स्कंद का अध्याय 18 है वामन अवतार भगवान वामन देव और उसमें के इंट्रोडक्शन में ही इसके शुरू के श्लोक में बताया गया कि वामन देव किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए तो भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न थे। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था, ब्लैकिश इन कॉम्प्लेक्शन। और शिला प्रभुपाद बताते हैं मटेरियल वर्ल्ड में मतलब ब्लैक मतलब अगली, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो कृष्ण को भी कहते हैं श्याम सुंदर, हालांकि वो परफेक्ट ब्लैक नहीं है, वो एक दिव्य जगत का रंग बताया जाता है, परंतु वो बहुत सर्व आकर्षक हैं। और वे पीताम्बर पहने थे, येलो क्लॉथ्स थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, बाह्य लोक तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गायें, ब्राह्मण, यहां तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी। अतएव यह शुभ दिवस विजय कहलाता है, इसलिए आज विजय द्वादशी भी इसका नाम है। जब सच्चे आनंद विग्रह भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्म उत्सव संपन्न किया। उनके यज्ञोपवित संस्कार के समय सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्ग लोगों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगु कच्छ कहलाता है, जहां भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, मृगशाला तथा जनऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र तथा कमंडलू लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। श्री वामन देव भगवान की। तो अगर आपने सेक्शन पढ़ा हो, इसमें शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान अपना रूप बदल कर क्यों गए। डायरेक्ट विष्णु फॉर्म में जाके बलि महाराज से अगर वो मांगते तो उसमें क्या आपत्ति थी। भगवान को एक वामन रूप, ताकि बलि महाराज तुरंत पहचान ना सके, तो ऐसा रूप क्यों लेना पड़ा। हाँ, कि बलि महाराज ब्राह्मणों को दान देते थे, ठीक है। तो अगर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर भगवान विष्णु अवतार, विष्णु अवतार एज इट इज फॉर्म में भी जाते तो बलि महाराज उनके भक्त हैं या अभक्त हैं। कैसे? प्रहलाद महाराज के पोते हैं और बताते हैं कि वो कृपा सिद्ध हैं। कैसे? प्रहलाद महाराज की कृपा से उनको भक्ति लता बीज मिला और उन्होंने भक्ति को मेंटेन रखा। और जब भगवान का स्वयं उनके सामने प्रकट हुए तो वो पूर्ण रूप से प्रेम में विकसित हो गया। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अगर वो विष्णु के रूप में भी जाते तो भी बलि महाराज मना नहीं करते, इनकार नहीं करते देने से, परंतु फिर भी एक दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अपना रूप बदला और उस रूप में उन्होंने उनसे भिक्षा ग्रहण की। तो भगवान वामन देव की कुछ मुख्य शिक्षाएं और इन भगवान वामन देव और बलि महाराज के बीच में कैसा संबंध था, क्यों भगवान वामन देव प्रकट हुए। ऐसे भगवत गीता में जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति माम इति स अर्जुन। कि भगवान के प्राकट्य उनके सारे कार्यकलाप दिव्य स्तर पर हैं, दिव्य हैं, और जो इनके दिव्यता को समझ जाता है उसको इस भौतिक जगत में वापस लौट कर नहीं आना पड़ता। तो भगवान वामन देव जब यज्ञशाला में गए तो उनकी क्या मुख्य उन्होंने शिक्षा दी। कई श्लोकों में उन्होंने बताया, पहली शिक्षा कि संतुष्टता ही असली धन है, कंटेंटमेंट इज रियल वेल्थ। और वो बताते हैं कि कैसे ब्राह्मण, सन्यासी या ब्रह्मचारी भिक्षा ग्रहण करने उनका एक कर्तव्य है, परंतु अगर वो अपनी जरूरत से ज्यादा भिक्षा मांगते हैं तो उनका आध्यात्मिक पतन होता है। और फिर आगे लिखते हैं उसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस भौतिक जगत में जितनी की जितनी कष्ट है वो एक कारण से है। वो क्या? एक्स्ट्रावेगेंस, ऑल डिस्ट्रेसेस आर ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंस। तो और वामन देव जब बलि महाराज ने कहा कि तुम मेरे से सिर्फ तीन पग जमीन मांग रहे हो तो तुम किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जाकर इतना कम क्यों मांग रहे हो? उसके बाद तो खूब मांगना चाहिए, तुम अभी मैच्योर नहीं हो। तो भगवान वामनदेव ने कहा कि अगर किसी के पास इस ब्रह्मांड का सारा धन भी क्यों ना हो, परंतु अगर उसकी इंद्रियां असंयमित हैं तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो इस धन को कैसे अर्जित किया जा सके, कैसे सेटिस्फेक्शन जो है इसको प्राप्त की जाती है अपने जीवन में, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये होता है दो दो चीजों से। पहला है एजुकेशन और दूसरा है कल्चर। इसलिए श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म को लेके बहुत एम्फेसिस करते थे कि जब तक ब्राह्मणिकल कल्चर है, क्षत्रिय संस्कृति है, वैश्य संस्कृति है, जिसमें सेटिस्फेक्शन एक प्राइम वर्च्यू होता था और बचपन से ही इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में शिक्षा बिल्कुल उल्टी है। आज के समय में हैप्पीनेस को किससे इक्वेट किया जाता है? आपके पास कितनी ज्यादा धन सुविधा है उससे इक्वेट किया जाता है, परंतु वैदिक संस्कृति बिल्कुल उल्टी है। उसमें बताया गया है कि प्रोविडेंस से जितना आपके पास आ जाए उसमें कैसे संतुष्ट रहना सीखना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और जीवन के उद्देश्य की ओर किस प्रकार से केंद्रित रहना है। तो भगवान वामनदेव और बलि महाराज के बीच में एक बहुत ही रस आस्वादन था, बहुत ही घुये संबंध था। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक भक्त अपना व्यक्तिगत हर कुछ त्यागने को तैयार रहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और इसी प्रकार से भगवान का निस्वार्थ भाव से कुछ भी करने को तैयार होते हैं अपने भक्त के लिए। वामनदेव को क्या आवश्यकता थी भिक्षा मांगने के लिए? वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, पूरी सृष्टि उनसे हुई है, परंतु फिर भी वो बलि महाराज का गुणगान करने के लिए उनके पास गए। और बलि महाराज भी अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं कि भगवान कैसे असुरों पर देवताओं से ज्यादा कृपालु होते हैं हर बार। कैसे? कि भगवान देवताओं पे इतने कृपालु नहीं होते जितना असुर गण पे कृपालु होते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान विष्णु ने ऐसे छल किया, देवताओं की साइड ली, परंतु और ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं, परंतु आप सोचिए जो असुर की साइड है वो क्या कह रहे हैं कि भगवान कैसे भेदभाव कर रहे हैं कि हम पर ज्यादा कृपालु हैं बजाय देवताओं के। कि बार 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 उनका सब कुछ छीन लेते हैं और उनकी झूठे अहंकार से रक्षा करते हैं, है ना? तो किसी के जीवन में अगर सब कुछ छिन जाए तो ये क्या भगवान की कृपा है? नहीं, हमेशा नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सब कुछ चला जाए तो वो भगवान की कृपा ही है, ऐसा भी नहीं है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, वो चाहे तो सब कुछ छीन भी सकते हैं, वो चाहे तो सब कुछ दे भी सकते हैं। वो देखते हैं कि किस प्रकार से भक्त की आध्यात्मिक स्थिति मेंटेन रही की जा सके। तो बलि महाराज को ये कृपा क्यों प्राप्त हुई और क्यों वो भगवान के दर्शन करने के लिए वो सक्षम रहे? ये हुए प्रहलाद महाराज की कृपा के कारण। जो प्रहलाद महाराज से उन्हें भक्ति लता बीच मिला और वो किस प्रकार से स्फुरित हुआ प्रेम में, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, गुरु और कृष्ण की कृपा दोनों से भक्ति प्राप्त होती है। और इसी के संदर्भ में गंगा जी का प्राकट्य का भी उल्लेख आता है कि गंगा जी कैसे प्रकट हुई। गंगा जी के प्राकट्य के तीन अलग अलग वर्जन है। पहला, वामनदेव जब एक्सपैंड करते हैं तो जब उनके अंगूठे से पूरा ब्रह्मांड छेद कर देते हैं तो वहां से कॉजल ओशन का पानी उनके चरण कमलों का अभिषेक करते हुए इस श्लोक में प्रकट होता है। दूसरा, हाँ नहीं, वो तो पृथ्वी पर लेके आए, इस ब्रह्मांड में कैसे प्रकट हुई? वो तो स्वर्ग लोक से बस पृथ्वी लोक पे लेके आए। ब्रह्मा जी के कमंडलू से जो जल उन्होंने भगवान के पादुका का जो अभिषेक किया जब भगवान वामनदेव का, तो उसको भी बताया गंगा ने। और तीसरा कहते हैं कि भगवान नारायण खुद ही गंगा के रूप में अवतारित होते हैं। तो तीनों वर्जन है, श्रील विश्वनाथ चक्रधरी ठाकुर बताते हैं अलग अलग जगह गंगा के प्राकट्य का। तो आज वामनदेव जी के प्राकट्य में हम गंगा माता जी का भी स्मरण कर सकते हैं। और बलि महाराज के दो गुण शिला प्रभुपाद बताते हैं, बार बार उन दो गुण का उल्लेख करते हैं जो उनके इस लीला से बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्प्ले होता है। वैसे तो महाजन है और बहुत ही सारे गुण हैं, परंतु दो पर्टिकुलर गुण ऐसे हैं जो इस लीला से प्रकट होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण समर्पण, हाँ वो तो है, वो आचार्य हैं भक्ति के अंग, आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं, परंतु पर्टिकुलर क्वालिटी कौन कौन से? हाँ, पहला था टॉलरेंस, फॉरबियरेंस, और दूसरा उनका भक्ति भाव। टॉलरेंस किस प्रकार से? शिल प्रभुपाद लिखते हैं, जो परीक्षा भगवान वामन देव ने बलि महाराज को दी, किसी भी और व्यक्ति को देते वो जी नहीं सकता था। इतना टफ पोजीशन था कि पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उनका सब कुछ हर लिया, सबके सामने बेइज्जती की, उनको बंदी बना लिया, और उसके बाद क्या कहा? नर्क में चले जाओ, नर्क के लोकों में चले जाओ। तब बलि महाराज को यह नहीं पता था कि नर्क लोक में स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य है। जब भगवान ने उनको नर्क लोक में सब कुछ छोड़ने के जाने के लिए कहा, फिर भी बलि महाराज ने कोई अपोज नहीं किया, वो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया और चले गए। तो यहां पर दोबारा उनका जो सहनशीलता थी या जो उनका पूर्ण समर्पण भाव था, भक्ति भावना, वो प्रकट होती है। और तो ये कैसे संभव है कि लिखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उनके पिता ने विरोध किया कि तुम, क्योंकि वो विष्णु की भक्ति करते थे, हिरण्यकश्यपु। फिर उनके पोते बलि महाराज को देखते हैं, उनके गुरु ने विरोध किया। तो वो हालांकि एनिमी साइड पे होते थे, उनके सारे परिवार, परिकर, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब होते थे, इन सब के प्रति जो प्राकृतिक अफेक्शन है उसको छोड़कर वो भगवान विष्णु की शरण में ग्रहण कर लेते हैं। तो एक आम व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार देख के बहुत हैरतअंगेज रह सकता है, तो ऐसा वो क्यों कर पाए? तो शिला प्रभुपाद इसी बात का उत्तर देते हैं अपने एक तात्पर्य में, और वो कहते हैं कि जो जिसमें वो शरीर और आत्मा का भेद बताते हैं कि शरीर जैसे ही टाइम मैच्योर होगा, ये शरीर आत्मा को स्वयं ही छोड़ देगा। तो जो आत्मा का मूल स्वभाव है वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और कैसे भगवान की शरण ग्रहण करके जो उनके सगे संबंधी है उनका असली उद्धार हो सकता है। और लास्ट में जब बलि महाराज भगवान वामन देव से, भगवान वामन देव ने बलि महाराज को क्या आशीर्वाद दिया, हालांकि वो खुद भगवान व्यक्तिगत रूप से उनके लोक में चौकीदारी करने गए, तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद भगवान वामन देव ने बलि महाराज को एश्योर किया। बलि महाराज बहुत चिंतित थे कि मेरा जो संघ है वो असुरों के साथ है, और तो मैं कैसे इस असत्संग में रह सकता हूं। तो भगवान वामन देव ने मुख्यतः इस कारण से वो बलि महाराज के साथ गए कि तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे संग में रहोगे, और मेरे संग से तुम हमेशा इस असत्संग से बचे रहोगे। तो बलि महाराज जो महाजन है वो उस अवस्था में भी असत्संग से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे वामन देव से। और शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जब एक असुरगण एक भक्त के साथ संग करता है और भगवान के गुणगान में जुड़ता है तो वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है, उसकी सारी असुरिक मानसिक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो आज के दिन हम भगवान वामन देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस प्रकार का संग हमें भी प्रदान हो और हमेशा हम इस संग में रहें। बलि महाराज से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार से वो सहनशील थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने पोजेशंस, अपना मन, अपना शरीर भगवान की सेवा में, और किस प्रकार से वो हमेशा शाश्वत काल के लिए अपने इस आत्मसमर्पण से महाजन के रूप में विख्यात हुए। श्री वामन देव प्राकट्य दिवस महामहोत्सव की, तो आज ही शिलाजीव गोस्वामी जी का भी प्राकट्य दिवस है, और हमारे मूवमेंट पे एक्सप्रेस राधिका रमन प्रभु, उन्होंने एक सीरीज ऑफ सेमिनार दिया था मायापुर में षट संदर्भ के ऊपर, और जिसमें मुख्यतः पहले सेशन में उन्होंने बताया कि दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स ऑफ नॉलेज और दूसरा कंटेंट ऑफ नॉलेज। तो हमेशा ज्ञान अर्जित करने से पहले जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसका गुणगान करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में सोर्स ऑफ नॉलेज और उसका जो कंटेंट दोनों ही सर्वोच्च हैं और बहुत जितना गुड़ इसका गुणगान करना चाहिए। तो मैं पहले उनका धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से मैं कुछ श्रील अजीब गोस्वामी जी के बारे में जान पाया, और जो श्रील प्रभुपाद जी के परपट्स और अन्य आचार्य के द्वारा जो और श्रील अजीब गोस्वामी का जो गुणगान है उनसे प्रार्थनाएं करते हुए श्रील अजीब गोस्वामी के बारे में कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे। जय श्री श्री राधा राधिकारमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो उन्होंने किस प्रकार से प्रचार किया? कोई भी व्यक्ति उनको मिलता था, भक्ति लता बीज होता था, उसी समय वो पूरा प्रेम में विकसित होता था और तुरंत कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त हो जाता था। वो फिर आगे अपने गाँव में जाता था, पूरा का पूरा गाँव कृष्ण प्रेम में डूब जाता था, और इस प्रकार से पूरा का पूरा भारत, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति के महासागर में डूब गया। परंतु एक शहर ऐसा था जो इसमें नहीं डूबा, जो इस बाण से वंचित रहा। कौन सा? नहीं, दिल्ली नहीं, हाँ बनारस। क्यों? हाँ, क्योंकि मायावाद सिद्धांत के द्वारा। तो जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में वो बनारस गए, और वहां पर उन्होंने देखा कि कोई भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना, मेरे पास एक बहुत भार है, इसको मैं यहाँ पे कोई लेने के लिए कोई ग्राहक नहीं है, तो मैं मुफ्त में बांट रहा हूं। तो फिर भी कोई नहीं आया, और फिर महाप्रभु आगे चले गए वृंदावन। जब वो वापस जा रहे थे और फिर वापस जब बनारस गए तो उनके दो नित्य परिकर, उनके भक्त चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्रा महाप्रभु के पास गए, और उन्होंने बोला कि महाप्रभु आप इन सब बातों से शायद अनअफेक्टेड होंगे, आपको कोई प्रभाव नहीं करता, परंतु हमारा हृदय बहुत दर्द पीड़ा होती है ये देखकर कि कैसे लोग आपका तिरस्कार करते हैं, कैसे लोग आप जो इसे संकीर्तन कर रहे हैं इसको एक बहुत ही भावुक प्रदर्शन मानते हैं, तो कृपया आप कुछ कीजिए। तो महाप्रभु सहमत हुए और उन्होंने एक मीटिंग अरेंज कराई प्रकाशानंद सरस्वती, वहां जितने ब्राह्मण सन्यासी उन सब के जो हेड थे प्रकाशानंद सरस्वती अपने हजारों सन्यासी शिष्यों के साथ आए, और कैसे फिर हम जानते हैं महाप्रभु ने अपनी सौंदर्य से, अपनी विनम्रता से और अपने दार्शनिक चर्चा से उनको परिवर्तित किया। सारे के सारे जो मायावादी थे वो वैष्णव बन गए, है ना। तो इसमें प्रकाशानंद सरस्वती का जो मुख्य क्रिटिसिज्म था महाप्रभु को लेके, वो क्या था? उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना ठीक है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, परंतु वो किसके लिए है? इन सब नए लोगों के लिए। आप एक सन्यासी हो, आपको क्या शोभा देता है कि बाहर गली में जाकर आप ऐसे नाच गा रहे हो? आप इस संप्रदाय से हो, केशव भारती से आपने सन्यास लिया है, तो आप पूरे सन्यास समूह को बहुत एम्बेरेस कर रहे हो इस प्रकार का। और फिर उनके बीच में फिर वार्तालाप होता है। तो उस समय महाप्रभु ने जो दार्शनिक वार्तालाप किया उससे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मायावादी सब वैष्णव में कन्वर्ट हो गए। परंतु हम देखते हैं ये महाप्रभु के समय में हुआ, कुछ दशकों बाद और आज के समय में भी यही हर प्रैक्टिसिंग डिवोटी को ये एलिगेशन का सामना जरूर करना पड़ता है, है ना। चाहे परिवार से, मित्रों से, अगर कोई कहे कि आप, है ना, पीएचडी करके क्या गली में बुक बांट रहे हो, है ना, आप सब इंजीनियर हो, ये हो, वो हो, और कोई अगर आपको देखे, सोचिए आपका कोई पुराना मित्र हो और देखे कि आप धोती कुर्ता हेड शेव करके गली में ऐसे नाच रहे हो, अभी संकीर्तन निकल रहा है और वहां पे लोगों को रोक के खिचड़ी बांट रहे हो, बुक बांट रहे हो, तो क्या कहेंगे? खासकर शुरू में तो परिवार वाले तो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि तुम कैसे आंदोलन से जुड़ गए, थोड़ा ना सोफेस्टिकेटेड आंदोलन से जिसमें फिलोसफिकल डिस्कशन हो, ऐसे बाहर अगर तुमने प्रैक्टिस करनी भी अपने तक रखो, ये बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? और कि भक्तगण कितने भावुक होते हैं, बस हरे कृष्णा कीर्तन में नाचना गाना आता है बहुत, है ना, बस भक्ति का रंग लग गया, परंतु इसका फाउंडेशन क्या है? तो ये राधिका रमन प्रभु बता रहे थे अपने डिस्कोर्स में कि हर जनरेशन में ये एलिगेशन पास ऑन होगा और ये बहुत स्वाभाविक है। तो परंतु एक ऐसे भक्त जिन्होंने इस एलिगेशन को फॉर वंस एंड ऑल, जिनका पूरा का लाइफ का जो राइटिंग्स था पूरा डेडिकेटेड था इसको खत्म करने के लिए, जड़ से हटाने के लिए, वो थे शिला जीव गोस्वामी। और शिला जीव गोस्वामी, उन्होंने उनको अलग अलग रोल से उनकी व्याख्या की। पहले उनका सिर्फ हिस्टोरिकल हम अगर पर्सपेक्टिव से देखें, शिला प्रभुपाद लिखते हैं इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवतम के सबसे महान टीकादार जो हुए वो हैं शिला जीव गोस्वामी। इस पृथ्वी पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स दैट एवर वॉक दिस ग्लोब इज शिला जीव गोस्वामी। और ऐसे शिला प्रभुपाद ही नहीं, बाहर के जितने स्कॉलर्स एकेडमिक वर्ल्ड में वो सब इस बात को एडमिट करते हैं। कैसे? शिला जीव गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में कम से कम 25 वर्क की रचना की। ये 25 वर्क में लगभग हाफ अ मिलियन, लगभग 4 से 5 लाख श्लोकों की रचना की। इतना व्यासदेव जी ने भी जब वेदों का कंपाइल किया, पुराण उपनिषद, तब मिला के ये 4 लाख श्लोक किए, परंतु उसमें भी ज्ञान और कर्म का मिश्रण था। परंतु शिला जीव गोस्वामी ने जिन सारे श्लोकों का विस्तार किया उसमें सब भगवत तत्व ही से ही चर्चा किया। और किस प्रकार के उनके वर्क्स होते थे, तो 25 वर्क जो उन्होंने क्रिएट किए उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कमेंट्रीज, श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री, क्रम संदर्भ, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु पर उन्होंने टीका लिखी। तो ऐसे ये 4 कैटेगरीज, एक प्रकार की कैटेगरी जिनमें उन्होंने कमेंट्रीज लिखी। दूसरा कैटेगरी, उन्होंने पूरा दर्शन को डिस्कस किया, जैसे षट संदर्भ, है ना। तीसरा कैटेगरी जिसमें लिटरेरी वर्क्स होते थे, जैसे भगवान की लीला से संबंधित, जैसे कि गोपाल चंपू, माधव महोत्सव और ऐसे अन्य कई सारे वर्क। और फिर चौथा, उन्होंने मैनुअल्स क्रिएट किए। कैसे मैनुअल्स? जैसे कृष्ण जन्म तिथि विधि की, जन्माष्टमी कैसे ऑब्जर्व करनी है, हरिनाम व्याकरण, तो कुछ कुछ चीजों को करने के लिए जो पूरी गाइडलाइंस होती थी वो उन्होंने क्रिएट की। तो वो बता रहे थे कि इन 25 वर्क में से एक वर्क है षट संदर्भ, एक बुक है, एक वर्क 25 में से षट संदर्भ। इसके 6 पार्ट हैं, उसमें तीसरा पार्ट है परमात्मा संदर्भ, उसमें 103 लगभग अध्याय हैं, उसमें से एक अध्याय के कुछ श्लोक पे उन्होंने स्टडीज की और उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD मिली। तो ये उनका, आप सोच सकते हैं कि कितना फिलोसफिकल वास्टनेस और कितनी फिलोसफिकल डेप्थ, है ना। तो जैसे कि महाप्रभु को अगर आप देखेंगे आज के समय में जो इंडियन बुक्स होती हैं फिलोसफी, उसमें एक सेक्शन होता है इंडियन फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी, उसमें अलग अलग फिलोसफर्स जैसे रामकृष्ण, विवेकानंद, फिर माध्वाचार्य, रमजाचार्य, है ना, और ऐसे एक सेक्शन होता है उसमें सेंट्स का, उसमें महाप्रभु की गणना होती है कि महाप्रभु कैसे भक्ति भाव से होते थे। परंतु बाहर के संसार में महाप्रभु को एज अ ग्रेट फिलोसोफर नहीं जाना जाता, और ऐसे क्यों? तो बता रहे थे गौड़िया वैष्णविज्म, अभी उसको सिर्फ लगभग 500 वर्ष हुए हैं, परंतु इन 500 वर्ष में जिस प्रकार का राइटिंग का वास्टनेस और जिस प्रकार का राइटिंग का डेप्थ है वो किसी भी और संसार में किसी भी सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। और बहुत से एग्जाम्पल दिए, इसमें से एक एग्जाम्पल जैसे दिया श्रीला जीव गोस्वामी का कि किस प्रकार से उन्होंने इतने उसकी रचना की। फिर उन्होंने एक व्याकरण की रचना की जो सारे भगवान कृष्ण के नाम से संबंधित थे। कैसे? जैसे अ ई उ ऊ, ये वॉवल्स हैं, शॉर्ट वॉवल्स, तो इनके ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया, क्योंकि छोटे हैं तो इनको उन्होंने नाम दिया वामन, आज वामन द्वादशी है तो वामन। और फिर जो बड़े वॉवल्स होते थे आ ई उ, इनको क्या दिया, त्रिविक्रमा। उसके बाद वॉवल्स को वो क्या बुलाते थे, क्योंकि कोई भी चीज का आपने प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंस करना है, तो वॉवल्स पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कंसोनेंट बिना वॉवल के, मान लीजिए आपको क, अब बिना अ के ये क बोलना असंभव है। तो इसलिए वॉवल्स को जैसे अ आ ई ई उ ऊ, इन सबको वो बुलाते थे सर्वेश्वर। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए स्वर पे डिपेंड रहते, वॉल्स पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको वो बुलाते थे विष्णुजन, जैसे भगवान की सेवा जो हमेशा भगवान विष्णु पे डिपेंडेंट है। तो पूरा का पूरा जो व्याकरण है उन्होंने भगवान कृष्ण के नामों से संबंधित एक सिस्टम क्रिएट किया व्याकरण पढ़ाने, हरिनाम व्याकरण। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क है 25 में से एक, और ऐसे तो हर उसकी बहुत डेप्थ है। तो वो बता रहे थे कि ये जो 25 वर्क हैं चार कैटेगरीज में, कह रहे किसी भी कैटेगरी को मास्टरी करने के लिए आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दो से ज्यादा कैटेगरी में अपना वर्क लिखता होगा। मान लीजिए अगर कोई बहुत कमेंट्रीज लिखता है तो वो लिटरेरी वर्क नहीं लिखेगा, कोई फिलोसफी की चर्चा करता है तो वो लीला की नहीं करेगा। तो ये अलग अलग योनराज हैं। तो पूरे संसार में मुश्किल से कोई आपको मिलेगा जो किसी दो योनरा में आप कुछ लिखता हो, परंतु जीव गोस्वामी इन चारों योनरा में लिखते थे। और इतना ब्रेथ होने के बाद भी डेप्थ की कोई सीमा नहीं थी, कमी नहीं थी कि डेप्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। तो जीव गोस्वामी अनुपम गोस्वामी जी के पुत्र थे। अनुपम गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये पांच भाई और एक बहन थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी अलाहाबाद में, तब अनुपम गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे, और वापसी पे किन कारण से उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तब जीव गोस्वामी बहुत कम आयु के थे। तो हम देखते हैं कि वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के क्या हुए, भतीजे हुए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, ये सब ब्रदर्स थे, और अनुपम गोस्वामी के पुत्र थे जीव गोस्वामी। तो छह के छह गोस्वामी में से जो सबसे यंग गोस्वामी थे वो श्रीला जीव गोस्वामी थे। और हम देखते हैं कि उनका जन्म किन परिस्थिति में हुआ, कि जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, डबीर खास और शकर मलिक, नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य था बंगाल, और सबसे समृद्ध, सबसे वेल्दी, और उसके नवाब हुसैन शाह वो बता रहे थे नंबर थर्ड पर रूप गोस्वामी थे, क्योंकि नंबर सेकंड बहुत रिस्की पोजीशन थी नवाब हुसैन शाह के लिए किसी को एंट्रस्ट करना। तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा किंगडम वो रन करते थे। तो ऐसे ऑपुलेंट उसमें उनका जन्म हुआ, परंतु बचपन से ही वो बहुत वैरागी थे, और कृष्ण बलराम के उनके पास विग्रह थे जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। उनका बचपन में श्रृंगार करते थे, स्नान करते थे, अभिषेक करते थे, भोग लगाते थे, और उसका जो प्रसाद है उसका वितरण किया करते थे। और वो इतने अटैच थे कि कभी भी सोते थे हमेशा कृष्ण बलराम को साथ पे लेके सोते थे। और जब रूप गोस्वामी, पहले रूप गोस्वामी गए, फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर गए, तो फिर जब इनके पिता जी अनुपम गोस्वामी जी का भी देहांत हुआ, तो ये अपनी माता के साथ रामकेली में अकेले रहे। बताते कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार जब महाप्रभु रामकेली में आए थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उद्धार करने के लिए, तब जीव गोस्वामी बहुत यंग थे, और तब उन्हें महाप्रभु के दर्शन भी प्राप्त हुए, परंतु कोई डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर वो घर से संस्कृत पढ़ने के उपलक्ष में बहाना देकर वो निकले। पहले उनको कृष्ण बल जब एक शाम में वो मनन कर रहे थे, कृष्ण बलराम विग्रह के सामने क्रंदन कर रहे थे कि उनके जो दोनों चाचा हैं रूप गोस्वामी साहब वो वृंदावन जा चुके हैं, उनके कोई पिता नहीं है, तो उनके भविष्य को लेके क्या होगा। तो जब उनके स्वप्न आया तो स्वप्न में गौर कृष्ण बलराम गौर नेताय के रूप में उनको साक्षात दर्शन दिया और नवदीप लीला प्रकट की। और जब वो स्वप्न से जागे तो उनकी बहुत प्रगाढ़ इच्छा हुई कि किस प्रकार से वो जल्द से जल्द वृंदावन की ओर जाए। परंतु पहले वो सबसे पहले कहाँ गए, वृंदावन जाने से पहले वो गए नवदीप में, और नवदीप में जाकर शिवा सांगन में, क्योंकि नित्यानंद उस समय महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे और नित्यानंद प्रभु खड़दा से वहां पहुंचे, तो शिवा सांगन में नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की। और जो पहली नवदीप मंडल परिक्रमा उस समय नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के साथ जितने भी महाप्रभु की लीला स्थली है वहां पर लेके गए, और जो महाप्रभु के पार्षद थे वो अभी जीवित थे, क्योंकि महाप्रभु अप्रकट होते 48 साल की उम्र में, तो उनके जितने पार्षद थे महान महान भक्त अभी जीवित थे, तो वो हर लीला स्थली पर जाके अलग अलग भक्तों से मिलते थे, उनकी कृपा प्राप्त करते थे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उन्हें निर्देश दिया कि आप जिस निर्देश के लिए बहुत उम्मीद कर रहे थे कि आप जाइए वृंदावन और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को असिस्ट कीजिए। तो हम देखते हैं भगवान और उनके भक्त किस प्रकार से वृंदावन में एक बहुत सशक्त समुदाय की रचना कर रहे थे, अलग अलग भक्तों को वृंदावन में भेजकर। और नित्यानंद प्रभु फेमस हैं अपनी इस इंस्ट्रक्शन के लिए, और किनको उन्होंने ये आज्ञा दी थी कि आप जाइए वृंदावन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, है ना। तो वृंदावन जाने से पहले वो रास्ते में कहां गए, दोबारा से नहीं वो तो अपने जीवन में पहली बार गए बनारस, और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य कौन, मधुसूदन वाचस्पति। तो वहां पर उनसे जो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को ज्ञान दिया था वो सारा ज्ञान सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने शिष्य मधुसूदन वाचस्पति को दिया, और उनसे उन्होंने वो भक्ति के जो गुण तत्व हैं वो सीखे, और साथ ही साथ एक साल के अंदर उन्होंने अलग जो 6 फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं उसको भी सीख लिया। तदे एक जीवन में एक फिलोसफिकल सिस्टम मास्टर करना बहुत टफ है, परंतु उन्होंने एक साल में 6 के 6 फिलोसफिकल सिस्टम्स मैट किए। परंतु उनकी अप्रोच डिफरेंट थी, उन्होंने सारे फिलोसफिकल सिस्टम किस लिए सीखे कि बाद में जाके वो इन्हीं फिलोसफिकल सिस्टम के साथ एंगेज करेंगे, किन्हीं को परास्त करेंगे, किन्हीं के किसके साथ सहमत होंगे, और महाप्रभु की जो शिक्षा है उनका स्थापना करेंगे। तो उसके बाद वो गए श्री वृंदावन धाम में, और वहां जाकर वो शिला रूप गोस्वामी जी के शरण में आए, और शिला रूप गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की, शिला रूप गोस्वामी जी के शिष्य थे। तो बताते जब जीव गोस्वामी के बारे में डिस्कस करते हैं तो बाहर के वर्ल्ड में मोस्टली उनको किस प्रकार से देखा जाता है, उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन से, है ना। परंतु ये कहती है उनकी लाइफ का हाफ भी नहीं है, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए उसका 50% भी नहीं है। क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसी के वो गणना करते हैं। तो सबसे पहली सेवा क्या थी शिला जीव गोस्वामी की, हाँ, एडिटिंग करना, उससे भी पहले थी वो बिल्कुल विनम्र सेवक की तरह शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी या जितने भी अन्य वैष्णवगण आते थे वृंदावन उनकी सेवा किया करते थे, जैसे स्नान में असिस्ट कराना, धूप से बचाना, जो उस समय शिला रूप गोस्वामी लिखते थे जो ग्रंथों की रचना करते थे उनके लिए सामान तैयार करना, लीव्स तैयार करना, जगह की सफाई करना, है ना। तो शुरू शुरू में उनकी इस विनम्र भाव इस सेवा भावना से पूरा का पूरा वृंदावन में जितने भक्त थे वो आकर्षित हो गए, है ना, और वो सबके हृदय के बहुत करीब बन गए। जब FTVT भी ज्वाइन करते हैं सबसे पहले बिल्कुल मीनियल सेवा में एंगेज करते हैं, उससे होता क्या है वो सारे वैष्णव की कृपा को आकर्षित कर लेते हैं, उनका फेवर आकर्षित कर लेते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे शिला रूप गोस्वामी ने उनको एडिटिंग वर्क दिया एंड ट्रस्ट किया। बता दें किसी भी राइटर के लिए लास्ट चीज जो वो चाहते हैं अपने वर्क में चेंज करना है ना, इसलिए कोई भी राइटिंग कोई भी राइटर होगा उसकी एडिटर के साथ हमेशा टग ऑफ वॉर रहती है। एडिटर कहता है ये चेंज करो, राइटर कहता है नहीं ये मैं इसको ऐसे पुट अप करना चाहता हूं, है ना। परंतु रूप गोस्वामी को कितना फेथ था जीव गोस्वामी की इन कैपेबिलिटीज में, उन्होंने उनको एडिटिंग की सेवा से इंटरेस्ट किया। और बाद में हमें एक लेटर भी मिलता है जिसमें जीव गोस्वामी श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को लेटर लिखते हैं कि ये बुक्स मैं आपको अभी पहुंचा रहा हूं जब वो बंगाल में थे, और ये बुक्स मैं अभी नहीं पहुंचा रहा क्योंकि इसमें एडिटिंग वर्क बचा है ना। कई बार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में भी बहुत लोग कहते हैं कि प्रभुपाद बुक्स को एडिट किया गया है, परंतु यहां पर हम देखते हैं कि उस समय भी एडिटिंग वर्क एक डिसाइपल को इंटरेस्ट किया जाता था जो आचार्य के अप्रकट होने के बाद भी कंटिन्यू रहता था। इनफैक्ट आज के समय में जितने गोस्वामी गण के वर्क हैं वो सब एडिटेड वर्जन है जो जीव गोस्वामी ने किए, तो ये एडिटिंग एक बहुत नॉर्मल सिस्टम हुआ करता था। तो उसके बाद उन्होंने एडिटिंग वर्क किया, तो वो बता रहे थे कि एक उन्होंने पर्सपेक्टिव एज अ चीफ गोस्वामी एज अ ग्रेट स्कॉलर, बट नॉट ओनली ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। कैसे? उस समय जिस समय जीव गोस्वामी रह रहे थे उस समय सबसे टफ टाइम था गौड़िया वैष्णव इतिहास में। क्यों? क्योंकि महाप्रभु अभी अप्रकट हुए थे। और सोचिए जब शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान यानी जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए है ना, तब जब ऋषिगण भी ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि कौन धर्म किसकी शरण में जाएंगे, जब भगवान अप्रकट होते हैं या आचार्य अप्रकट होते हैं तो उनके फॉलोअर्स के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उस समय भी महाप्रभु के अप्रकट होने से तो बहुत प्रकार की कंफ्यूजन फैल रही थी। सबसे पहली कंफ्यूजन तो ये कि महाप्रभु कौन है। अभी हम कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना, परंतु उसकी कैसे पता चला? उस समय कंफ्यूजन थी महाप्रभु क्या भगवान कृष्ण है या कृष्ण के अवतार है या वो विष्णु के अवतार है जो असुरी मानसिकता का खंडन करने आए हैं, कौन है महाप्रभु? तो ऐसे ये एक एस्पेक्ट, ऐसे कई एस्पेक्ट्स थे जिस पे पूरा का पूरा आंदोलन डिवाइड हो सकता था मल्टीपल ब्रांचेस में, परंतु शिला जीव गोस्वामी जी के कारण उनके क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे फिलोसफिकल मैटर्स में। और उस समय यहां तक कि जानवा माता जी जो बंगाल में लीडर थी वैष्णवों की, और जीव गोस्वामी उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनको सम्मान किया करते थे, तो वो भी जब कई बार वृंदावन आए जीव गोस्वामी जी से सलाह करने के लिए, और शिव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ गोस्वामी गण के ग्रंथ बंगाल में भेजे, अपने शिष्यों को भेजा नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु को वहां पे प्रचार करने के लिए, तो पूरे के पूरे आंदोलन को यूनाइटेड रखने के लिए, किस दिशा में आगे बढ़ना है वो डायरेक्शन देने के लिए, और फिलोसफिकल प्योरिटी इसको मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा योगदान था शिला जीव गोस्वामी जी का। तो उन्होंने कैसे अलग अलग भक्तों को इंस्पायर किया इसमें आगे बढ़ने के लिए, तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर, है ना। तो कहते नॉट ओनली एज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ ग्रेट मैनेजर। कैसे? और मैनेजमेंट से प्राइमरली इस आंदोलन के जितने फिजिकल एसेट्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए। उस समय किनका राज था? हाँ, मुगल एम्पायर था। और बताते थे जो वृंदावन है इसकी लोकेशन है दिल्ली में और आगरा में, दोनों ही पॉलिटिकल पावर्स के बहुत बड़े केंद्र हैं। और कह रहे हैं जब भी आगरा का या दिल्ली का राज्य का ट्रेजरी कम होती थी तो किसी ना किसी कारण को ढूंढ के वृंदावन में रेड मारी जाती थी। क्यों? वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, आर्च विग्रह हैं, तो क्या है साथ में जमीन है, डीटीस की ज्वेलरी है, इतना डोनेशन आता है, इतने सारे लोग वहां रहते हैं, तो बार बार किसी भी दिल्ली से या आगरा से किसी की भी ट्रेजरी कम होती थी बार बार अपनी आर्मीज को भेजते थे, वो सब कुछ लूट के आते थे मल्टीपल टाइम्स। औरंगजेब से पहले हजारों वर्ष से ये प्रथा चलती आ रही थी। तो अभी आज के समय में हम तो उस श्री गोविंद देव जी का मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर है, तो आज के समय में हम वो मंदिर कैसे विजिट कर पाते हैं? कोई रीजन नहीं है कि वो मंदिर वहां पे एग्जिस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ श्री राजीव गोस्वामी जी की एक्सपर्ट मैनेजमेंट से। उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली में रूल कर रहे थे अकबर, उनसे रिलेशनशिप बनाए, आगरा में जो रूल कर रहे थे उनसे रिलेशनशिप बनाए, बीच में राजपूत के थ्रू, क्योंकि राजपूत उस समय इतने स्ट्रांग थे कि कोई भी मुगल एम्पायर उनसे लड़ाई नहीं करता था, इसलिए उनके साथ दोस्ती कर लेते, ट्रीटी कर लेते थे, और राजपूत के से दोस्ती करके वो एज अ स्पोक्स पर्सन जाते थे मुगल्स के पास, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट उनसे साइन करवाया कि आने वाले समय में कि ये जो संपत्ति है ये गौड़िया वैष्णव जो परंपरा में आ रहे इनके अंडर ही रहेगी, और इस प्रकार से लीडरशिप पास ऑन होगी, है ना। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि जब औरंगजेब के समय भी जब आर्मी आती थी तो कैसे वो लूटपाट मचाती थी अंधाधुन, परंतु अंधाधुन नहीं होता था, वो भी किसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते थे। तो आप देखें कि बाकी सारे मंदिर खत्म हो चुके हैं, परंतु ये मंदिर राधा गोविंद देव और मदन मोहन जी का मंदिर, और ये उस समय के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर पूरे नॉर्थ इंडिया में, राधा गोविंद देव जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर, इतना विशाल जो वो था, और बताते थे इतने एक्सपर्ट मैनेजर थे, और साथ ही साथ जितने गोस्वामी गण थे वो इतने अफेक्शनेट थे जीव गोस्वामी पे। तभी हम देखते हैं कि जितनी समाधियां हैं वो कहाँ पर है, राधा दामोदर मंदिर में, गोविंद देव मंदिर में, या ओरिजिनल समाधि सनातन मदन मोहन मंदिर में, और अन्य जगह पे नहीं है, जबकि वो ज्यादा बड़े मंदिर है राधा दामोदर मंदिर से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका क्योंकि शिलाजीव गोस्वामी जिन्हें सबका हृदय जीत लिया था, और क्या एसेट्स थे जिनको उन्होंने प्रिजर्व किया, राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जी की एक स्पेशल लाइब्रेरी थी जिसको हर गोस्वामी गण कंसल्ट किया करते थे अपने लेखन कार्य के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी इतने अफेक्शनेट थे जीव गोस्वामी पे कि अपने जाने के बाद उन्होंने वो जीव गोस्वामी के नाम ही करके गए। बाद में उस लाइब्रेरी को राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट किया गया। तो जब श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि राधा दामोदर मंदिर हमारे संप्रदाय का पूरे आध्यात्मिक जगत का सेंटर है, क्यों? क्योंकि वहां पे गोस्वामी गण मिलकर चर्चा किया करते थे कैसे कृष्ण भावनामृत को पूरे संसार में फैलाना है, और राधा दामोदर के विग्रह भी शिला रूप गोस्वामी ने बहुत प्रेमवश खुद ही बना के जीव गोस्वामी को दिए थे। तो इसलिए हम देखते हैं ही वॉज नॉट ओनली एक्सपर्ट स्कॉलर, ही वॉज एक्सपर्ट लीडर, ही वॉज एन एक्सपर्ट मैनेजर। नॉट ओनली ही वॉज एन एक्सपर्ट मैनेजर, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट टीचर। पूरे भारत से लोग उनके पास, जितने भी गुरु हैं, अपने शिष्यों को भेजा करते थे वृंदावन में जीव गोस्वामी के अंडर पढ़ने के लिए, है ना। उसके प्राइम एग्जाम्पल हैं श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, है ना। इनमें से कोई भी जीव गोस्वामी से दीक्षा नहीं ली हुई, परंतु जैसे नरोत्तम दास ठाकुर किनके शिष्य हैं, लोकनाथ गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इन तीनों ने ट्रेनिंग प्राप्त की जीव गोस्वामी से, तो वो उनको प्रशिक्षण किया करते थे, उनको एजुकेशन के बाद टाइटल्स दिया करते थे, उसके बाद उनको सेवा में एंगेज करते थे और रेगुलरली गाइड किया करते थे। ये तो हम तीन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो वो एक महान शिक्षक के रूप में भी थे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें ये चारों गुण हो? आज के समय मिलना बहुत डिफिकल्ट है। कहते या तो कोई बहुत अगर कोई वो फिलॉसफी में बहुत तेज बहुत निपुण है तो वो अच्छा टीचर नहीं होगा, कि इतना एक्सपर्ट स्कॉलर है उसको डाउन टू अर्थ स्टूडेंट के लेवल पे आके समझाने के लिए, है ना, या अगर वो बहुत ही इंटेलेक्ट में हाई है तो अच्छा मैनेजर नहीं होगा, है ना। जितने बता रहे थे जितने प्रोफेसर हैं उनसे उनसे अपना जीवन ही मैनेज नहीं होता, औरों का जीवन मैनेज करने की दूर की बात है ना। तो शिला जीव गोस्वामी में चारों गुण उनकी लाइफ में देखते थे। और बताते एक व्यक्ति और है जिनकी लाइफ में चारों गुण देखते हैं, कौन? जीवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की। कैसे? वो भी ये शिला प्रभुपाद जी की कृपा से ही बता रहे थे कि हम अगर शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं तो इतने जो फिलोसफिकल ग्रंथ लिखे हैं जीव गोस्वामी ने, वो सारे के सारे आज के समय, आज के प्रॉपर टाइम से एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल्स देते हुए शिला प्रभुपाद जी ने और इसके स्कोपी प्राणदंत जी ने जो उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं तत्व संदर्भ, तो उनकी कृपा से हम उनके वर्क्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और एक लास्ट सेक्शन पे मैं इसमें विराम दूंगा कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं जीव गोस्वामी को, शिला प्रभुपाद भी तात्पर्य में बहुत विस्तार से समझाते हैं चैतन्य चरितामृत के, कि जो वल्लभाचार्य वृंदावन में आए और शिला रूप गोस्वामी से मिले, वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी भी एक दूसरे को जानते थे, अलाहाबाद में जब महाप्रभु वल्लभाचार्य के घर गए तो शिला रूप गोस्वामी भी साथ गए थे, उड़ीसा में भी जब वल्लभाचार्य आए अपनी कमेंट्री चेक करने तो रूप गोस्वामी वहां उपस्थित थे। तो इसलिए जब वल्लभाचार्य वृंदावन में आए और रूप गोस्वामी से मिले तो शिला रूप गोस्वामी जी ने उन्होंने ऑफर किया, उसमें भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, उनको प्रदर्शित किया कि कृपया आप इसको देखिए और चेक कीजिए। तो उन्होंने सब कुछ देखा और उन्होंने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कहा कि जो आपने लिखा है भुक्ति मुक्ति स्प्रीहा पिशाची, मुक्ति स्प्रीहा पिशाची। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुक्ति भक्त लोग हमेशा भक्ति के लिए एस्पायर करते हैं, परंतु मुक्ति को पिशाची कहना ये तो बहुत वो है, शायद ये उनको ठीक नहीं लग रहा था। और शिला रूप गोस्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार किया, है ना। परंतु उस समय जीव गोस्वामी वहां पर रूप गोस्वामी जी को पंखा कर रहे थे, तो उनसे अंदर से रहा नहीं गया। तो फिर बाद में जब वो वल्लभाचार्य के पास गए, गंगा स्नान सॉरी यमुना स्नान उनको असिस्ट करने गए, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया इस पर डिस्कस करने के लिए जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो वल्लभाचार्य ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बात भी करना चाहता हूँ कि आपका यश इतना फैल रहा है, मैं खुद आपसे बात करना चाह रहा था। तो उन्होंने बताया कि कैसे शिला रूप गोस्वामी ने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, मुक्ति की स्पृहा इच्छा को पिशाची कहा है ना, कि भक्ति के अलावा कोई भी इच्छा हृदय में है तो वो पिशाची की तरह कार्य करती है। तो ये देखकर वल्लभाचार्य बहुत इंप्रेस हुए और वल्लभाचार्य वापस रूप सनातन रूप गोस्वामी के पास गए और उनके शिष्य को बहुत अप्रिशिएट किया। परंतु जब उनके जाने के बाद रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पे बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आप इतना आपका कोई नियंत्रण नहीं है अपनी जीवा के ऊपर, आपका कोई नियंत्रण नहीं है आपके झूठे अहंकार के ऊपर, तो इसलिए आप यहाँ पर वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं हो, और उनको वृंदावन से बाहर भेज दिया। तो कुछ लोग, ये जो पूरा पास टाइम हुआ इसके बाद हम देखते हैं वहां पे वो मथुरा यमुना नदी के तट पर रहे और फास्टिंग किया करते थे, यही वो समय है जब उन्होंने षट संदर्भ की रचना भी की, उनका सबसे पहला कार्यों में से है। और बाद में पूरा का पूरा वृंदावन समुदाय बहुत ही निराश था जीव गोस्वामी के जाने से, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को अप्रोच किया और फिर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास गए और कहा कि आप महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा मैं कौन सी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा आप उन महाप्रभु की आज्ञा बताइए, मैं बताऊंगा जब आप उस आज्ञा में आएंगे। तो जब वो आए, नामे रुचि जीवे दया, है ना, तो उन्होंने कहा जीवे दया, तो आप जीव गोस्वामी पे कृपालु नहीं है। तो ये सुनकर रूप गोस्वामी बहुत हंसने लगे और उन्होंने जीव गोस्वामी को वापस बुला लिया। परंतु जो सहजिया गण होते हैं वो ये जीव गोस्वामी जी की आलोचना करते हैं कि जीव गोस्वामी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल और अपनी स्कॉलरशिप की तरफ उनका रुझान था, तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी तो रसिक भक्त होते हैं जिनका शास्त्रों में कोई रुचि नहीं होता, है ना, पढ़ने का, उससे ऊपर होते हैं। तो ये सहजीय गणों का एलिगेशन रहता है। तो शिला प्रभुपाद इसकी बहुत एक एक आर्ग्यूमेंट को खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि जो तीनों लोगों ने जो किया, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, बिल्कुल परफेक्ट वैष्णव बिहेवियर था। जीव गोस्वामी ने जो किया बिल्कुल सही किया, वो कहते हैं। क्यों कि गुरु वैष्णव उन्होंने अपने गुरु का सम्मान का प्रोटेक्शन किया और उन्होंने प्रोटेक्शन बहुत ही सही तरीके से किया, बहुत विनम्र भाव से जेंटली अप्रोच करते हुए गया। और इसका उल्लेखना कैसे होती है, उसके बाद जब श्रील रूप गोस्वामी जी ने जब उनके साथ किया तो बता रहे कि कई बार जब उन्होंने उनको डांटा तो जीव गोस्वामी जी ने रेजिस्ट नहीं किया कि देखिए शास्त्रों में तो ये लिखा है कि गुरु को उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने तुरंत स्वीकार करके वो वहां से चले गए और रूप गोस्वामी एक आदर्श गुरु के रूप में उन्होंने उनकी आलोचना की, उनको डांटा, जो गुरु का एक कर्तव्य है। और सनातन गोस्वामी ने भी एक कम्युनिटी लीडर के रूप में अपना रोल प्ले किया, है ना। तो ये सोचना कि या शास्त्र की तरफ बहुत ज्यादा रुझान या रस की तरफ बहुत ज्यादा रुझान, ये दोनों जो इनकम्पैटिबल देखते हैं जितने सहजिया भक्त हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं वो शास्त्रों में फिलोसफिकल में पारंगत और साथ ही साथ रस तत्व में भी पारंगत, है ना, दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। देखा कैसे श्रील जीव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन, जो आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे ग्रंथ, ये सारे फिलोसफिकल ट्रूथ्स, ये इतने जो हाईएस्ट फिलोसफिकल ट्रूथ्स जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, इनका प्रिजर्व करते हुए, इनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हुए आज हमें जिस रूप में, रेडीमेड रूप में और जो अवेलेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वती आचार्य और हमारे आंदोलन में विशेषकर श्रील जीव गोस्वामी जी की कृपा से है। उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन दिया इस आंदोलन को, बहुत बार फाउंडेशन दिखता नहीं है, परंतु अगर फाउंडेशन नहीं है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ढह जाता है। तो ये उनके फाउंडेशन के ही कारण है जो उन्होंने ये पूरा का पूरा आंदोलन जिस पर टिका हुआ है। और उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो उनके प्रतिनिधि हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उनको हम नियमित रूप से पढ़ सकें और अपने जीवन में उतार सकें और अन्य लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की, श्रील वामन देव प्राकट्य महा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, नित्याय गौर प्रेमानंदे।